بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه قال: توضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا اؤتمن، وليحسن جوار من جاوره. یہ ایک حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس کی روایت کرنے والے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر ملنے لگے. وضو کا پانی کیا مراد ہے اس سے؟ بخاری شریف کی شرح کرنے والے علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ وضو کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کے اعضاء سے جو پانی الگ ہو کر نیچے ٹپکنے والا ہوتا تھا، اس کو حضرات صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں اور اپنے جسموں پر مل لیا کرتے تھے. دوسرا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ وضو کا پانی جس برتن میں ہوتا ہے، اس زمانے کے اندر ہمارے زمانے کی طرح نل نہیں تھے، نلکی والے لوٹے نہیں تھے، چھوٹے برتن نہیں تھے، بڑا تشلا تگارا ہوا کرتا تھا، اس میں پانی ہوتا تھا اور اسی کو تھوڑا سا جھکا کر پہلے دانے ہاتھ کی اس میں پانی لے کر دونوں ہاتھ دھو کر پھر اندر ہی ہاتھوں کو داخل کر کے پانی لے کر وضو کیا جاتا تھا، جیسے دیہاتوں میں عورتیں کرتی ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے. عام طور پر اسی طرح وضو کرنے کا رواج تھا. تو گویا جس برتن میں پانی ہوتا تھا اور اس میں اپنا مبارک ہاتھ ڈال کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، اور آپ کے وضو سے فارغ ہو چکنے کے بعد جو پانی اس برتن میں بچ جاتا تھا، اس کو لے کر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اپنے جسموں اور چہروں پر مل لیا کرتے تھے. یہ دو مطلب اس کے بیان کیے ہیں، اور احادیث میں جو واقعات آتے ہیں اس سے بھی ان دونوں مطلبوں کی تائید ہوتی ہے. بخاری شریف میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام محصب میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہاں اپنے ظہر اور عصر کی نماز ادا فرمائی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے वुजू का पानी लाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वुजू से फारिग हो गए तो बचा हुआ पानी हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु जब लेकर जाने लगे तो हजरत सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन उस पानी को लेने के लिए टूट पड़े। जिसके हाथ में आया आया, जिसके हाथ में नहीं आया वो जिसके हाथ में आया होता था उसकी तरी को ले करके अपने जिस्म और चेहरे पर मलता था। बुखारी शरीफ की रिवायत में ये मौजूद है। इसी तरह बुखारी ही में गज़वे हुदैबिया के मौके का वाकया है, जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरात सहाबा को लेकर उम्रे के इरादे से मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए तो मक्के वालों को जब पता चला तो उन्होंने आसपास के दूसरे तमाम कबाइल को झूठा ये कहा कि ये हमला करने के लिए आ रहे हैं, और इस तरह अपने साथ उनको मिलाकर उन्होंने ये तय किया कि इनको मक्का मुकर्रमा में दाखिल नहीं होने देना है। खैर वाकया तो बड़ा लंबा है, आपने हिकायत सहाबा में सुना होगा, मगर मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सीधा मक्का मुकर्रमा जाने के बजाय अपना रास्ता बदल कर ज़रा घूम कर हुदैबिया के रास्ते से आप मक्का में जाने के लिए आगे बढ़े, और मक्का में हुदैबिया में जब आप पहुँचे हैं तो आपकी ऊँटनी बैठ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको उठाना चाहा लेकिन वो उठी नहीं। हजरत सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन कहने लगे खलातिल कसवा खरातिल कसवा, आपकी ऊँटनी का नाम था कसवा, बैठ गई कसवा बैठ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसवा नहीं बैठी बल्कि हबसहा हाबिसुल्फील, जिस ज़ात बाबरकात ने हाथियों वालों को रोका था उसी ने इसको यहाँ पर बिठा दिया है। गोया अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आपको ये इशारा दिया गया कि अब आगे बढ़ना नहीं है, यहाँ ठहरना है। वहाँ ठहरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों पर कहलवाया कि हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम तो उम्रा करने के इरादे से आए हैं, हमारा रास्ता रोका न जाए, हमको जाने दिया जाए, हम बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे, सफ़ा मरवा की सही करेंगे, अपने सर के बाल उतारेंगे और वापस आ जाएंगे, हमें तुमसे कोई लड़ाई मतलूब नहीं। लेकिन मक्के वालों ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे। इसी सिलसिले में बार बार इधर से आदमी उधर भेजे गए, उधर से भी कुछ लोग आए, उधर से जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में बातचीत करने के लिए आए उनमें एक हजरत उरवा इब्ने मसूद सकफ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हो थे, कबीले बनू सकीफ के बड़े सरदारों में से हैं, और उस वक्त तक अभी ईमान लाए नहीं थे, बाद में अल्लाह ताला ने उनको ईमान की सआदत अता फरमाई, और उसके बाद उन्होंने अपनी कौम को जब ईमान की दावत दी उनकी कौम ने उनको शहीद कर दिया था। तो बहरहाल वो हजरत उरवा जो उस वक्त तक अभी मुसलमान नहीं हुए थे, मक्के वालों से उन्होंने यूँ कहा तुम अगर कहो इजाज़त दो तो मैं इनसे जाकर बातचीत करूँ। चुनांचे कहा जाइए, वो आए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में और आकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की। वो तो बड़ी लंबी चौड़ी है, मैं उसको बयान नहीं करना चाहता। वहाँ से फारिग होने के बाद जब वो मक्का वालों के पास वापस लौटे हैं तो उन्होंने मक्के वालों से कहा कि कुरैश, मैं दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूँ, कैसर किसरा नजाशी, लेकिन किसी भी बादशाह के आदमियों को उस बादशाह के साथ ऐसी मोहब्बत करते हुए नहीं देखा जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मानने वाले उनके साथ मोहब्बत करते हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा कि वो जब बलगम निकालते हैं तो वो बलगम ज़मीन पर नहीं गिरता बल्कि वो लोग अपने हाथों में ले लेते हैं और लेकर अपने चेहरों और जिस्मों पर मल लेते हैं। जब वो कोई किसी बात का हुक्म देते हैं तो उनमें से हर एक उस हुक्म को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जब वो वुजू करते हैं तो उनके वुजू के पानी को लेने के लिए आपस में झगड़ते हैं। वो जब कोई बातचीत करते हैं तो सब एकदम खामोश होकर उनकी बात को सुनते हैं, कोई निगाह भर कर और आंख लगा कर उनको देखने की हिम्मत और जुरत नहीं करता। गोया उन्होंने ये कह दिया कि ये कोई और शख्सियत है। बहरहाल मैं तो जो बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि हजरात सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन का मामला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ यही था हमेशा कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू के पानी को जब भी मौका मिलता लेकर अपने जिस्मों और चेहरों पर मल लिया करते थे मोहब्बत की वजह से। ये वाकया जो मैंने बयान किया हदीस ये रावी कहते हैं हजरत अब्दुर्रहमान कि एक दिन ऐसा ही हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया और आदत के मुताबिक हजरत सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वुजू के पानी को लेकर अपने जिस्मों और चेहरों पर मलना शुरू किया। ये मंजर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन हजरत सहाबा से एक सवाल किया, मा यहमिलुकुम अला हाज़ा, अरे भाई बताओ कि तुम ऐसा काय को करते हो, ये मेरे पानी जो वुजू का पानी गिर रहा है उसको लेकर अपने जिस्मों और चेहरों पर क्यों मल रहे हो। अब देखिए वो क्यों मलते थे, वो एक ऐसी हकीकत है कि जिसको एक थोड़ी बहुत समझ रखने वाला आदमी सुने और हम भी आज सुन रहे हैं तो समझते हैं कि वो क्यों करते थे ऐसा, मोहब्बत की वजह से करते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हजरत सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की तरबियत के लिए और उनके वास्ते से कयामत तक आने वाली पूरी उम्मत की तरबियत के लिए भेजा था, इसलिए आप इस मौके पर इस वाक़े के ज़िम्न में उनकी तरबियत करना चाहते थे, इसलिए आप उनकी ज़बान से ये कहलवाना चाहते थे कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक ऐसा होता है कभी कि कोई आदमी कोई काम कर रहा है, हम समझते हैं कि वो क्यों कर रहा है, लेकिन हम कभी फिर भी पूछते हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, ताकि उसके मुंह से वो खुद जब जवाब देगा तो हमको उस पर जो कहना है वो कह सकें। यहाँ पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन हजरात सहाबा से जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वुजू के पानी को लेकर अपने जिस्मों और चेहरों पर मल रहे थे पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा, मा यहमिलुकुम अला हाज़ा, अरे भाई बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल के जवाब में सहाबा ने वही बात कही जिसकी तवक्को और उम्मीद थी। क्या कहा, हुब्बुल्लाह व रसूली, हम तो ए अल्लाह के रसूल, हम तो ये काम अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में करते हैं। अब देखो अरबी जबान जो है ना बड़ी अजीब व गरीब है, उसमें बड़ी वसात है, कभी एक ही जुमला होता है, उस एक ही जुमले में अगर आप ज़रा सा ये बदल दें फेरफार कर दें तो दोनों मतलब अलग अलग हो जाएंगे। या हुब्बुल्लाह व रसूली, अहले इल्म मौजूद हैं अरबी जानने वाले, लफ्ज़ हुब अरबी जबान का मस्दर है और उसकी इजाफत की गई है अल्लाह व रसूली की तरफ़, तो अरबी ग्रामर के अंदर कायदा है कि मस्दर की इजाफत कभी फाइल की तरफ होती है, कभी मफूल की तरफ होती है। मफूल की तरफ मानी जाए यहाँ इजाफत, तो उसका मतलब ये होगा हुब्बुल्लाह व रसूली, कि अल्लाह के रसूल हम ये काम इसलिए करते हैं कि हम अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। वह अल्लाह व रसूली मफूल हो जाएगा, और मोहब्बत करने वाले कौन? सहाबा। और मोहब्बत की किससे जा रही है? अल्लाह ताला और उसके रसूल से। एक मतलब इस जुमले का ये हो सकता है। दूसरा मतलब, अगर इस मस्दर की इजाफत को फाइल की तरफ माना जाए तो यूं समझा जाएगा कि अल्लाह के रसूल हम ये काम इसलिए करते हैं कि अल्लाह ताला और उसके रसूल हमसे मोहब्बत करें, मोहब्बत वो करें और महबूब हम बने। पहली सूरत में मोहब्बत हम कर रहे हैं और महबूब कौन बन रहे थे? अल्लाह और उसके रसूल। दोनों मतलब, इस जुमले के दोनों मतलब हो सकते हैं। सहाबा ने जो जुमले में जवाब में जो जुमला कहा था उसमें दोनों मतलब हो सकते थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरबी जबान की फसाहत और बलागत के आला मेयार पर फाइज थे, सैयदुल फसहा वल बुलगा थे। इसलिए इस जुमले के अंदर क्या मतलब छुपा हुआ है आप बहुत अच्छी तरह जानते थे। इन दोनों मतलबों का लिहाज करते हुए आगे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलह। जिस आदमी को ये बात पसंद हो, जो आदमी ये चाहता हो कि वो अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत करे, कौन सा मतलब? पहले वाला मतलब। औ युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, या जो आदमी ये चाहता हो कि अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके साथ मोहब्बत करे। दोनों बातें, तुम अगर ये चाहते हो कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करो, या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला और उसके रसूल तुम्हारे साथ मोहब्बत करें, तो तुमको ये तीन काम करने हैं जो आगे मैं बतला रहा हूँ। क्या तीन काम? फल यस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दसा, जब बात करे तो उस आदमी को चाहिए कि सच्ची बात करे। वल युद्दि अमानतहु इज़ा तुमिना, और जब उसके पास कोई अमानत रखी जाए तो उस अमानत को अदा करने का एहतमाम करे। वलयहसिन जवारमन जावरहु, और अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करे। अब ये तीनों बातें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई उसकी वजाहत और तफसील बयान करने से पहले एक बात की तरफ मैं आपको मुतवज्जह करना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमा कर कि जो आदमी ये चाहता हो कि अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, या जो ये चाहता हो कि अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक उससे मोहब्बत करें, तो उसको ये काम करने चाहिए। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वुजू का वो पानी लेकर जिस्मों और चेहरों पर मलने से रोका, ये नहीं कहा ऐसा मत करो। इसलिए कि जिसको मोहब्बत होती है ना, वो तो गांडा होता है, गांडा वो तो मोहब्बत में लिपट जाता है, चाटता है, चूमता है, उसको कहाँ रोकेंगे। मोहब्बत गैर इख्तियारी तो इश्क और मोहब्बत में आदमी बेख्तियार होकर ऐसा करता है। तो हजरत साहबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत थी, उस मोहब्बत की वजह से वह उस पानी को लेकर, पानी क्या जैसा कि अभी बतलाया, आपके बलगम तक को लेकर वो अपने जिस्मों और चेहरों पर मलते थे, तो फिर क्या बात। इसलिए उनको ये नहीं फरमाया कि ऐसा मत करो, इसलिए कि मुहिब और आशिक को ऐसा कहेंगे तो भी रुकता नहीं है, वो तो करके रहता है। लेकिन आपने एक बात बतलाई कि भाई मोहब्बत का तकाजा जो तुम कर रहे हो उसके मुकाबले में मोहब्बत का तकाजा क्या है वो मैं आपको बतलाऊं। ये असल में आपने तालीम दी, ये तरबियत फरमाई, ये आप हजरत साहबा की भी फरमाई, और आज जबकि इस वाकये को हम और आप सुन रहे हैं और मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, तो हम लोगों की भी आप ने ये तरबियत फरमाई कि मोहब्बत का तकाजा क्या है। मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप ने जो बातें फरमाई उन बातों पर अमल का एहतमाम किया जाए। यहाँ इस वाक़े के अंदर तीन बातें फरमाई, ये कोई इन तीन के साथ खास नहीं है, गोया ये तो एक नमूना है, एक मिसाल है। बाकी असल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन तालीमात को लेकर दुनिया में तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो बातें जो हिदायतें इरशाद फरमाई, हर उम्मती का मोहब्बत का तकाजा और फरीजा है कि आप हर उम्मती उन बातों को अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाए। बस मैं असल इस हदीस को बयान करके यही सबक आप हजरात के सामने दोहराना चाहता हूँ। अब यहाँ जो तीन बातें फरमाई वो तीन बातें भी ऐसी हैं कि उनकी तशरीह तफसील के लिए बहुत बड़ा वक्त चाहिए। इसमें से पहली बात जो है वो अब दो तीन मिनट रह गए हैं, उनमें मैं अर्ज कर देता हूँ। फल यसदुक हदीसहु इज़ा हद्दसा, कि जब बात करे तो सच्ची बात करे। ये आगे है, अच्छा 10 मिनट बाकी। ओहो अच्छा हुआ कह दिया, मैं तो इसी को देख रहा था। अच्छा तो ये भी आप मस्जिद में रह करके कर रहे हैं। हो सकता है ऐसे लोग जो हद से आगे बढ़ने वाले हों उनकी रहनुमाई के लिए आपने ऐसा किया हो। खैर तो बहरहाल ये मैं अर्ज कर रहा था, पहली बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाई, फल यस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दसा, जब बात करे तो सच्ची बात करे। सच्चाई, सच बोलना, वैसे हर मजहब उसकी ताकीद करता है। इस्लाम ने भी इसकी बड़ी ताकीद फरमाई, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन पाकीज़ा अखलाक को लेकर दुनिया में तशरीफ़ लाए और जिन आला अखलाक की नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को तालीम दी, उनमें ये सच्चाई ये बहुत अहम जो है तालीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बादशाहों के नाम जो है इस्लाम और ईमान की दावत के लिए जो खतूत भेजे थे, एक ख़त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर रूम हिरकल के नाम भी भेजा। वाक़या तो बड़ा लंबा है। जब वो ख़त उसके पास पहुंचा तो हिरकल ईसाई मज़हब का मानने वाला था, और इतना ही नहीं बल्कि वो उस मज़हब के बड़े आलिमों में से था। उस ज़माने में ईसाई मज़हब के दो बड़े आलिम थे, एक खुद ये हिरकल और दूसरा उनका जो बड़ा लाट पादरी मज़हबी पेशवा था वो। तो हिरकल ने जब ये ख़त उसके पास ये कहकर पहुंचाया गया कि ये ख़त अरब से एक ऐसी शख्सियत ने भेजा है जो अपने आप को अल्लाह ताला का नबी कहते हैं, तो उस ख़त को खोलकर पढ़ने से पहले उसने ज़रूरी समझा कि ये ख़त भेजने वाली शख्सियत कौन है, उनके मुतालिक मालूमात हासिल की जाए। चुनांचे उसने अपने आदमियों से पूछा कि भाई उस इलाके के कुछ लोग यहाँ मिल जाएंगे? उन्होंने कहा हाँ, वहाँ से तिजारत की गरज से काफ़िले आते रहते हैं, मक्का मुकरमा से तिजारत के लिए शाम काफ़िले जाते रहते थे। हम देखते हैं इत्तेफाक की बात कि मक्का मुकरमा से एक काफ़िला अबू सुफियान लेकर के वहाँ उसी ज़माने में पहुँचे हुए थे, और अबू सुफियान उस वक्त तक अभी इस्लाम लाए नहीं थे, बल्कि मक्का के मुशरिकों के सरदार हिज़्ब मुखालिफ के लीडर वही थे। और वही गया काफला लेकर वहाँ पहुँचे थे। हिरकल के आदमियों ने उन लोगों को हिरकल के सामने पेश कर दिया, वाकया तो बड़ा लंबा है। उसमें मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ ये है कि हिरकल ने अबू सुफियान से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक बहुत सारे सवालात किए और उनके जवाबात हिरकल ने दिए, अरे अबू सुफियान ने दिए। उन सवालात के बाद आखिर में एक सवाल ये किया, माजा या अमरुकुम, कि ये नबी तुमको किस चीज़ का हुक्म देते हैं, उनकी तालीमात क्या हैं। तो उसके जवाब में अबू सुफियान ने क्या कहा, या अमरुना बिस्सलाते व सदकते व सिदके व सिलते व लफाफे, कि ये नबी हमको हुक्म देते हैं नमाज पढ़ने का, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का, सच बोलने का, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का, और पाक दामनी का। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात के खुलासे के तौर पर जो पांच बातें अबू सुफियान ने बतलाई, उसमें क्या है, सच्चाई। सच्चाई बड़ी अहमियत रखती है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद फरमाई, बुखारी शरीफ में रिवायत है, अलैकुम बिस्सिद्क फइन अस्सिद्क यहदी इलल बिर व इनल बिर यहदी इलल जन्ना, कि तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो। क्यों, सच्चाई आदमी को बिर कहते हैं हर नेकी का काम, सच्चाई आदमी को नेकी के रास्ते पर लगाती है, और नेकी वाला रास्ता आदमी को जन्नत तक ले जाता है। बड़ी अजीबोगरीब बात नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाई, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। एक गोया आपने एक उसूल बतला दिया, मास्टर की दे दी हमको, गुरु चावी। इसलिए कि आदमी जो है ना, वो बहुत सी मरतबा आदमी सोचता है मैं अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहता हूँ, तो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए आखिर मैं शुरुआत कैसे करूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई को लाजिम पकड़ो। सच्चाई एक ऐसी नेकी है कि आदमी जब सच बोलना शुरू करता है तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से दूसरे नेक काम करने की उसको तौफीक अता फरमा दे। सच बोलने की बरकत से उसके लिए दूसरे नेकी के काम करना आसान हो जाता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया, फइन सिद्क यहदी इलल बिर, सच्चाई आदमी को नेकी की राह पर लगाती है, वइनल बिर यहदी इलल जन्ना, और नेकी वाला रास्ता आदमी को जन्नत तक ले जाता है। आगे बात, वैयाकुम वल किज्ब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम झूठ से बचो, फाइनल किज्ब यहदी इलल फुजूर, इसलिए कि झूठ आदमी को गुनाह के रास्ते पर लगा, फुजूर अल्लाह की नाफरमानी, फिस्क फुजूर बोलते हैं, नाफरमानी वाले रास्ते पर, वइनल फुजूर यहदी लन नार, और नाफरमानी वाला रास्ता आदमी को जहन्नम तक पहुंचाता है। ये झूठ, अब बहुत सी मरता लोग झूठ बोलते हैं, आज तो झूठ बहुत आम हो गया, अच्छे अच्छे लोग भी झूठ बोलने में जरा बराबर भी झिझक महसूस नहीं करते, हालांकि ये झूठ बड़ा खतरनाक, बड़ा खतरनाक, उसकी वजह से आदमी का दीन बर्बाद हो जाता है। उसकी एक मिसाल, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी हाजिर हुआ और आकर अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मैं बहुत से गुनाहों का शिकार हूँ, मैं चोरी भी करता हूँ, जिना भी करता हूँ, शराब भी पीता हूँ, झूठ भी बोलता हूँ, अब ये सारे गुनाह बैक वक्त एकदम सबको एक साथ छोड़ना मेरे लिए मुश्किल है, एक एक करके मैं छोड़ूंगा, आप ज़रा मुझे ये मशवरा दीजिए कि मैं पहले कौन सा गुनाह छोड़ूं। अब देखिए, हम और आप होते तो इन चार गुनाहों की लिस्ट में चोरी भी है, जिना भी है, शराब भी है और झूठ भी है। तो हम तो या तो यूं कहते जिना मत करियो, है ना, शराब मत पीजियो, लेकिन नबी करीम हमारे निगाहों में तो इन चार में सबसे हल्का बज़ाहिर क्या है, झूठ। लेकिन कुर्बान जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पर। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, झूठ बोलना छोड़ दे। देखो अजीब बात फरमाई, एक तो वो खुद भी ये समझ रहा होगा कि चलो इन चार में जो हल्की चीज थी वो फौरन आ कह देगा, एक तो दूसरी हिकमत उसमें ये भी थी, चनानचे उसने वादा कर लिया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। अब उस जमाने के लोग पक्के होते थे, हमारे जैसे खांचा निकालने वाले नहीं, समझा कि नहीं, एक बात हुई तो पक्की। तो अब उसने जब तय कर लिया झूठ नहीं बोलना, अब उसके बाद जब दिल में ख्याल आया कि चोरी करो, तो उसने सोचा कि चोरी तो करूंगा लेकिन मैंने तय किया है कि झूठ बोलना नहीं है। चोरी के बाद मुझसे पूछा जाएगा कि तूने चोरी की थी, तो मैं कहूंगा कि हाँ की थी, तो हाथ कटेगा, इसलिए चोरी नहीं की। फिर कुछ दिन के बाद ख्याल आया जिना करूं, तो फिर सोचा कि जिना तो कर लूंगा लेकिन मुझसे पूछा जाएगा तूने जिना किया था, और मैं तो मुझे चूंकि झूठ बोलना नहीं है इसलिए मैं कहूंगा हाँ, तो मुझे संसार किया जाएगा, जिना की सजा दी जाएगी। इसी तरह शराब तो का तकाजा हुआ, तो न चोरी की न शराब पी न जिना किया, एक झूठ क्या छोड़ा, सारे गुनाहों से नजात मिल गई। ये है देखिए। तो बहरहाल आज हमारे समाज में हमारे माशरे में झूठ बहुत आम हो गया, बहुत आम हो गया। अच्छे अच्छे लोग बाज मरतबा झूठ बोलते हैं और उनको ये एहसास तक नहीं होता कि हमने झूठ बोला, बेखबरी में बोल देते। अबू दाऊद शरीफ में है कि एक मरतबा एक औरत ने अपने बच्चे को कहा कि हो गया था हैं, मैं बस ये पूरा कर लेता हूँ। तो एक बच्चे का, ये बेटा इधर आ, तुझे कुछ देती हूँ। औरतों की आदत होती है बच्चे को बुलाना होता है, आता नहीं तो उसको कहते कुछ दे, कुछ देती हूँ। हाँ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को पूछा कि जब तू अपने बच्चे को यूँ कह रही थी कि इधर आ कुछ देती हूँ, वाकईतन तेरा कुछ देने का इरादा था? उसने कहा हाँ, मेरे पास खजूर एक पीस, एक दाना खजूर का था, मैंने नियत की थी कि वो आएगा तो उसको दूंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ऐसा न होता तो तेरे नामे आमाल में एक झूठ लिखा जाता। तो बहरहाल हमें चाहिए, अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इन तालीमात पर अमल की तौफीक और सआदत अता फरमाए। और हकीकत यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा यही है। हम लोग मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन आपकी तालीमात पर अमल करने का एहतमाम नहीं करते। हकीकत तो यही है, मोहब्बत का तकाजा यह है कि आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के एक एक जुज को अपनी ज़िंदगी में अपनाने का एहतमाम करे। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।